नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर चर्चा करने वाले हैं। शीर्षक है भगवान का काम करने का यही समय। हमारे पास इस उद्बोधन के कुछ अंश हैं और हम कोशिश करेंगे इसके मूल संदेश को समझने की कि आखिर क्यों पूज्य गुरुदेव इस समय को ईश्वरीय कार्य के लिए इतना खास बता रहे हैं।
जी, और ये बहुत गहरा विषय है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार ये जो समय है ये असाधारण है। वो कहते हैं आज मनुष्यता चौराहे पर खड़ी हुई है, मतलब ये कोई आम समय नहीं है। एक ऐसा मोड़ है जहां एक रास्ता नीचे गिरने का है और दूसरा मानवता के उत्थान का, एक बड़े बदलाव का अवसर है।
चौराहा मतलब एक तरफ खतरा और दूसरी तरफ एक बड़ी संभावना। और यहीं पर इसी मोड़ पर पूज्य गुरुदेव प्रज्ञावतार की बात करते हैं। ये समझना शायद जरूरी है कि किसी व्यक्ति का अवतार नहीं है, है ना?
हाँ हाँ बिल्कुल, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रज्ञावतार का मतलब है विवेक का अवतरण, सही गलत की समझ का, रितंबरा प्रज्ञा जिसे कहते हैं, उसका अवतरण। पूज्य गुरुदेव उदाहरण देते हैं जैसे कृष्ण अकेले नहीं थे, ग्वालबाल थे, राम अकेले नहीं थे, रीचवानर थे, गांधी जी अकेले नहीं थे, पूरी फौज थी साथ में। वैसे ही ये प्रज्ञा का अवतरण एक सामूहिक चेतना के रूप में, एक प्रवाह है ये।
और ये प्रज्ञा मतलब विवेक ही क्यों? गुरुदेव कहते हैं कि मानव रूप में जो अवतार हुए उन पर अहम कोई ना कोई लांछन लगा, राम पर भी कृष्ण पर भी, लेकिन विवेक जो सही निर्णय लेने की क्षमता है वो निष्कलंक है। तो क्या इसी निष्कलंक शक्ति का प्रभाव बढ़ रहा है?
बिल्कुल सही कहा, एकदम सटीक। और इस समय में पूज्य गुरुदेव का निर्देश बहुत साफ है कि हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए। वो कहते हैं कि भाई ये समय भगवान से अपनी छोटी मोटी चीजें मांगने का, अपनी इच्छाएं पूरी करवाने का नहीं है। नारद जी का उदाहरण देते हैं वो कि भक्त का काम मांगना नहीं बल्कि भगवान के काम में हाथ बटाना है। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल नहीं है? आमतौर पर तो लोग भगवान से सांसारिक चीजें ही मांगते हैं, जरूरतें होती हैं, तो क्या इसका मतलब है कि अपनी जरूरतें नजरअंदाज कर दें?
नहीं नहीं, नजरअंदाज करने की बात नहीं है, बात है प्राथमिकता समझने की। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सांसारिक वस्तुएं जो है वो भगवान सीधे नहीं देते, वो तो पुरुषार्थ से मिलती हैं या भाग्य से। भगवान से तो उससे कई ज्यादा कीमती चीज मिलती है, वो है सामर्थ्य। उनका प्यार पाने का मतलब है खिलाने की ताकत पाना, सिर्फ खाने की नहीं, दूसरों को फायदा पहुंचाने की क्षमता पाना, सिर्फ खुद फायदा उठाने की नहीं, सेवा करने की क्षमता और उसका आनंद, ये है असली वरदान।
अच्छा, तो यहीं पर शायद साधना का अर्थ भी बदल जाता है। ये सिर्फ पूजा पाठ मंत्र जाप तक ही सीमित नहीं है।
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पूज्य गुरुदेव साधना को दो हिस्सों में देखते हैं, एक है उपासना, दूसरा है जीवन साधना। उपासना मतलब ईश्वर से जुड़ाव, उनसे निकटता महसूस करना, इससे आस्था मजबूत होती है, प्रेरणा मिलती है। और जीवन साधना है आत्मसुधार, खुद पर काम करना, आत्मनिरीक्षण, आत्मनिर्माण, आत्मविकास, मतलब अपने अंदर की कमियों को हटाना और अच्छे गुणों को बढ़ाना।
और इस जीवन साधना में सेवा कहाँ आती है?
सेवा इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पूज्य गुरुदेव तो यहाँ तक कहते हैं कि पीड़ितों की, पिछड़े हुओं की मदद करना ही भगवान की सच्ची सेवा है। उपासना से प्रेरणा मिली और जीवन साधना से हमने खुद को सुधारा और फिर उस सुधरे हुए रूप से सेवा की। वो कहते हैं देने का सुख पहचानो। जैसे माँ को बच्चे को दूध पिलाने में आनंद आता है ना, बिना करुणा और सदाशयता के सिर्फ अपने लिए जीने वाले को ईश्वरीय कृपा कैसे मिलेगी?
तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये युग एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर है और पूज्य गुरुदेव इसे व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर सामूहिक चेतना के जागरण में, जिसे वो प्रज्ञावतार कह रहे हैं, उसमें भागीदार बनने का एक निमंत्रण दे रहे हैं।
जी हाँ बिल्कुल। और ये भागीदारी कैसे होगी? आत्मसुधार से, विवेक को अपनाने से और सबसे जरूरी निस्वार्थ सेवा से, जिसमें सांसारिक लाभ की उम्मीद न हो।
तो इसका मतलब ये हुआ कि साधना का असली रूप है उपासना और जीवन साधना का संतुलन, ईश्वर से भी जुड़े पर साथ ही साथ खुद को बेहतर बनाएं और दूसरों की सेवा भी करें। उपासना बिना सेवा के शायद अधूरी है।
एकदम सही। और यहीं पर एक विचारणीय बात भी है, पूज्य गुरुदेव सेवा को सिर्फ दूसरों की मदद करना नहीं मानते, वो इसे उपासना का फल मानते हैं, उपासना को सार्थक बनाने का तरीका। तो सोचने वाली बात यह है कि हम सब अपने रोजमर्रा के जीवन में इसे बोझ ना समझकर
निस्वार्थ सेवा का कौन सा छोटा सा काम अपना सकते हैं, इसे उस बड़े ईश्वरीय कार्य में अपनी एक छोटी सी भागीदारी मानते हुए।